हरे कृष्ण। तो आज की भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज एक विशेष प्रसंग और एक विशेष श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये भागवतम के 8वें स्कंध से 7वें अध्याय पर हम चर्चा करें और आज का श्लोक संख्या है 11 और इसका शीर्षक है शिव जी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। द लॉर्ड शिवा सेव्स द यूनिवर्स। तो हम इस श्लोक को उच्चारण करेंगे। तथा असुरानां अभिशात असुरेण रूपेण तेषां बलवीरवीर्यं उदीपयन् देवतानां विष्णु देवेन नागेन्द्रम् अबोधरूप। हरे कृष्ण। उसका शब्दार्थ और तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा तथा तत्पश्चात असुरान असुरों को आविष्टा प्रविष्ट हो गए आसुरेन रजगुण के द्वारा रूपेन ऐसे रूप में तेषां उनका बलवीर्यं बल तथा शक्ति ईर्यन बढ़ती हुई उदीपयन प्रोत्साहित करते देवगणान देवताओं को च भी विष्णु भगवान विष्णु देवेना सत रूप के द्वारा नागेन्द्रम सर्व के राजा वसुकी को अबोध रूप तमोगुण के द्वारा। सो तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में देवताओं में सतोगुण के रूप में तथा वसुकी में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन है। मंदर पर्वत द्वारा मंथन किए जाने में 3 अलग अलग दल थे, देवता जो सतोगुणी थे, असुर जो रजोगुणी थे तथा नाग वासुकी जो तमोगुणी था। क्योंकि सभी लोग थके जा रहे थे, वासुकी तो मरने वाला था, अतएव भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु उनके अपने गुण सतो रजो तथा तमोगुण के अनुसार प्रविष्ट हो गए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश्व गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हरे कृष्णा।
आप सभी का भागवत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और मैं कुछ शुरू करने से पहले अपने जितने भी वरिष्ठ यहाँ पे बैठे हैं, वैष्णव, विशेष रूप से राम राघव प्रभु जी और श्याम कृष्ण प्रभु जी, रवलोचन प्रभु जी और भी जितने वरिष्ठ यहाँ पे वैष्णव बैठे हैं, आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ इस पर व्याख्यान कर सकें। कुछ योग्यता नहीं है लेकिन भक्तों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, और तो आप आशीर्वाद दीजिए कुछ मैं इस भागवत का व्याख्यान कर सकूँ। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग चल रहा है कि इस अध्याय के अंदर भगवान शिव इस ब्रह्मांड को की रक्षा करेंगे, एक हलाल विश्व जब उत्पन्न होगा। और इस समय अभी देवतागण और असुगण मंदर पर्वत को खींच रहे हैं वसुकी सांप के द्वारा, और इसमें से अलग अलग आगे हम देखेंगे विषय प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इस तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान ने जब देखा कि असुरगण और सुर, देवता और असुर दोनों जब थक गए, तो उनके अंदर अलग अलग प्रवृत्ति के हिसाब से, उनके अंदर रजोगुण सत्वगुण तमोगुण की प्रवृत्ति के हिसाब से उनके अंदर प्रवेश हुए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस जगत में हर कोई तीन गुणों के अंदर है। हरे कृष्ण। इस जगत में हर कोई तीन गुणों के अंदर है। तो भगवान की भी तीन शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, तथस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो ये तीन गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और जब देखा भगवान ने कि देवताओं के अंदर थकावट है, तो उनको सतुगुण की शक्ति दी। और इससे अगर पहले के अध्याय में हम देखेंगे तो भगवान के पास जब देवतागण गए तो भगवान ने उनको ये सलाह दी कि आप अभी बहुत कमजोर हैं और अभी आप असुरों से नहीं जीत सकते, इसलिए आप क्या कीजिए, उनसे संधि कीजिए, और संधि करके आप एक ये योजना बनाइए मिलकर कि एक मंदर पर्वत को उसको मंथन कीजिए, तो उसमें से आपको अमृत प्राप्त होगा, उससे आप दोबारा शक्तिशाली होंगे और आपको बाद में विजय प्राप्त होगी। और ये अश्योर किया कि जब ये अमृत प्राप्त होगा तो ये मैं अमृत आपको ही दिलवाऊंगा। तो ऐसे शायद में दो दिन पहले नामपुर में क्लास ली थी, तो इनफॉलिबल डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान ने अगर कुछ निर्णय कर लिया तो वो पूरा होता ही है, सत्य संकल्प। तो फिर ऐसे संधि करके देवताओं से और असुरों में आपस संधि हुई, और जब वो मंदर पर्वत उठा रहे थे तो इतना भारी था वो, कुछ देवताओं और कुछ असुरगण उस पर्वत के नीचे ही कुचल गए, कहीं की हत्या हो गई इसमें, और कहीं के शोल्डर कुछ बहुत इंजरीज भी आई उनको, और कुछ मर भी गए। तो जब भगवान ने देखा तो वहां पर उनको दोबारा जीवित किया अपनी कृपा दृष्टि से। फिर उसके बाद भगवान गरुड़ पर उस पर्वत को उठा के लेके गए और उसे समुद्र में रखा, मिल्क ओशन, श्वेत द्वीप, श्वेत सागर। तो अब जब पर्वत रखा तो पर्वत भी नीचे डूबने लगा, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान कूर्म देव के अवतार के रूप में आए। तो पिछला श्लोक यही था कि भगवान ने कूर्म अवतार लिया, और जब पर्वत भगवान के कूर्म शरीर के ऊपर था तो भगवान को खुजली हो रही थी और ये बहुत भगवान को आनंद दे रही थी। तो प्लीजिंग पास्ट टेंस। इसके शुरुआत में प्रभा जी बताते हैं जो सारी लीला करी है भगवान ने अपने पास्ट टाइम्स को, अपने आप को आनंद देने के लिए करी। तो भगवान अगर अपनी खारिश भी करवाना चाहे तो इतनी बड़ी योजना रख सकें, भगवान के लिए कुछ नहीं है, एक स्पोर्टिंग पास्ट टाइम्स है। और यहाँ पर पहले फिर जब भगवान ने इनको आदेश दिया देवताओं को कि आप असुर से संधि कीजिए, तो उस समय भगवान ने उनको ये सलाह दी कि अगर इसमें से कई सारी चीजें प्राप्त होंगी तो आप किसी चीज़ से आकर्षित मत होना, और अगर कोई चीज ना मिले तो क्रोधित भी मत होना। तो यहां पर देवताओं को भगवान इस सत्वगुण की शक्ति प्रदान कर रहे हैं विशेष रूप से, क्योंकि अब यहां पर बहुत चैलेंज शुरू हो गई है और यहां पर बहुत सारी चीजें निकलेंगी, अलग अलग आकर्षण दिखेंगे। तो इसलिए उन आकर्षण से बचने के लिए एक सत्वगुण की जरूरत है, और देवताओं को रजोगुण दिया ताकि वो हार्ड लेबर करें, अपनी पूरी शक्ति लगाएं, पूरा एंडेवर करें, उससे कुछ विषय उत्पन्न होंगे और देवतागण और असुगण उसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर भगवान उनको सत्वगुण की शक्ति प्रदान करें देवताओं को। इसका उद्देश्य क्या है कि अगर रजोगुण से डील करना है तो सत्वगुण की बहुत जरूरत होती है, है ना, क्योंकि कई कई विषय आएंगे, कई कई चीजों से आसक्त होंगे, कई चीजें बहुत टेंटिंग लगेगी, कैप्टिवेट करेगी, बहुत आकर्षित लगेगी, लेकिन उससे ना आकर्षित हुआ जाए इसलिए क्या करना चाहिए, सत्वगुण बनाए रखिए, अपना धैर्य मत खोइए। तो धैर्य, पेशेंस और सब्र, ये सत्वगुण के लक्षण होते हैं, और सत्वगुण के कारण ही आपस में सहयोग होता है। तो जैसे हम बाद में देखते हैं, जब फाइनली बिल्कुल अमृत प्राप्त भी हो गया तो असुर उसको प्राप्त नहीं कर पाए, असुर को प्राप्त हो गया तो वो अमृत, लेकिन अब कौन लेगा उसको, आपस में लड़ने लगे तो लड़ झगड़ के वो कोई भी अमृत पी नहीं पाया। तो इसलिए कॉपरेशन भी चाहिए। तो जी कॉपरेशन का जो मूल कारण है, सतुगुण के कारण उत्पन्न होता है। और ये वैसे जो समुन मंथन की लीला है, बहुत ही एक रोमांचक लीला भी है और ये विश्व प्रसिद्ध भी है। एक बार एक भक्त गए थे थाईलैंड एयरपोर्ट पे, तो वहां पर उनको एक समुद्र मंथन का एक बहुत बड़ा एक बैनर मिला। तो ये नहीं है कि इसी भारत में विख्यात है, और एक कंबोडिया वॉल में भी समुद्र मंथन का विवरण आता है। यहाँ पे समुद्र मंथन एक वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ कंबोडिया वॉल, वहां पर भी जो भारत में नहीं है तो वहां पर भी इस समुद्र मंथन का विवरण बनाया गया है, एक चित्र बनाया गया। और इसी के उपलक्ष्य में हम एक फेस्टिवल मनाते हैं जो कुंभ मेला भी, उज्जैन में भी कुंभ मेला मनाया था। तो हम जैसे जानते हैं कि ये समुद्र मंथन के समय जब फाइनली अमृत प्राप्त हुआ और फिर असुरों में, आगे चल के पढ़ेंगे, असुरों में और देवताओं में फिर लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद ये अमृत चार जगह पे गिरा, अलग अलग चार जगह, जैसे हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद। तो 12 दिन की लड़ाई हुई थी, तो अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ इसकी दो लीलाएं थी, एक महाभारत में बताया गया और एक जो इंद्र के बेटे हैं जयंत उनके द्वारा भी किया। और जब गरुड़देव को भी प्राप्त हुआ था, वो अपनी माता को पिलाना चाहते थे, तो जब माता को पिलाना जा रहे थे तो बीच में लड़ाई हुई, तो कहीं कहीं जगह पे ऐसे चार जगह पे ये अमृत गिरा था। तो इसके पीछे ऐसे दो स्टोरियां बताएंगे, एक महाभारत में और एक पद्म पुराण के अंदर। तो इस भारत में बिल्कुल जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है रिकॉर्डेड है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे इस प्रसंग में कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सारा क्रेडिट अपने भक्तों को देते हैं, और कैसे अपने भक्तों के मान को खंडन करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए उनको करेक्ट करते हैं, और कैसे भगवान अपने इस लीला और इस आनंद की रक्षा, लीला करने के लिए, अपने आनंद के लिए इस प्रकार की अरेंजमेंट करते हैं। तो हमारे ये विषय रहेंगे आज, हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान अपने असुरगणों को, जो देवता हैं, उनको सतोगुण की शक्ति दे रहे हैं ताकि आपस में उनका सहयोग बढ़े, उनके सतोगुण की वृद्धि करें और आपस में वो लग, क्योंकि कई सारे आकाशीय चीजें निकलेंगे तो छीना छप्पी ना हो, मतलब कोई उसे छीने ना, आप सब्र कीजिए, आपको लास्ट में हमें जरूर मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं भगवान सारी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, है ना, और देखने में लग रहा है कि असुरगण और देवता ये आपस में एक कुछ एंडीवर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसमें से अमृत प्राप्त होगा। तो वास्तव में इसकी सारी योजना जब मंदर पर्वत आया और उसको लेके गए गरुड़देव के ऊपर भगवान, और उसके ऊपर बैठे और कूर्म अवतार लिया, इस पूरी लीला में भगवान ने 5 अवतार लिए। इस मंदर पर्वत की, मंथन की जो लीला है, इसमें बहुत नीचे भी है, ऊपर रस्सी भी खींच रहे हैं, और उसके आगे, इसके अगले वाला श्लोक जो आएगा, इसके ऊपर भी बैठेंगे। तो भगवान हजारों गुर्जाओं के साथ एक पर्वत के ऊपर, एक विशाल पर्वत की तरह भी भगवान लगेंगे और उसके ऊपर भी बैठे ताकि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि नीचे कूर्मदेव अवतार है तो थोड़ा सा बैलेंस हिलता है, उसलिए ऊपर भी बैठे ताकि बिल्कुल फिक्स हो जाए, एक रॉड बन जाए। रॉड को फिक्स करने के लिए ऊपर भी बैलेंस चाहिए, नीचे भी बैलेंस चाहिए, और बीच में भगवान देवताओं के साथ मिलकर उसको खींच रहे हैं। तो भगवान इसके बाद फिर आगे धनवंतरी अवतार भी लेंगे और उसके बाद मोहिनी मूर्ति अवतार भी लेंगे। तो सारी योजना के द्वारा कैसे देवताओं को विजय बनाना है और कैसे इससे अलग अलग उनको लेसन्स भी दिलवाने हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी समुद्र मंथन की, जब देवताओं ने दुर्वासा मुनि के प्रति अपराध किया था, जब दुर्वासा मुनि ने अपनी माला उनको दी थी, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इसकी शुरुआत में। तो उस इंद्र को माला दी थी, तो अपनी महाप्रसाद माला, तो उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया और उसको हाथी की सूंड पे, अपने ऐरावत हाथी की सूंड पे डाल दिया। तो हाथी को पता नहीं था क्या माला, उसने उसको कुचल दिया, उसको फेंक दिया। तो ऐसे देखकर उनको, दुर्वासा मुनि को बड़ा अपराध लगा इसका, और उन्होंने उनको श्राप भी दिया, जिसके कारण देवतागण बड़े वीक पड़ गए और फिर वो भगवान के पास गए ब्रह्मा जी के साथ। तो इससे एक पता लगता है कि एक भगवान अगर अपनी कई लीला करते हैं तो उसके कई उद्देश्य होते हैं। इस लीला का एक उद्देश्य ये भी है कि कैसे भगवान अपने भक्तों के गर्व को त्यागते हैं, उनको त्यागना सिखाते हैं। क्योंकि इंद्र उस समय बहुत शक्तिशाली थे, देवता भगवान के भक्त हैं और उसमें बहुत ही मॉडल ऑपुलेंस में थे, बहुत ऐश्वर्य में थे, इसलिए उनको दुर्वासा मुनि के उस कारण का कुछ ज्यादा उनको प्रभाव नहीं हुआ, बहुत कैजुअली लिया उन्होंने, ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया कि कोई मुझे महाप्रसाद माला दे रहा है। तो इसलिए जब व्यक्ति ऐश्वर्य में होता है तो कभी कभी समझ या अब जो बुद्धि है उसको खो देता है, तो उस बुद्धि को भी ठीक करने के लिए भगवान ने एक योजना बनाई और एक अपने आनंद के लिए भी। प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, भगवान ने योजना अपने आनंद के लिए भी बनाई। श्री श्री राधा राजे करमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौनिता जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्म रानी की जय। तो जब ऐसे इस प्रकार संधि हो गई तो भगवान ने इस लीला के माध्यम से ये भी असुरों को देवताओं को सिखाया कि अगर आप किसी के प्रति मान भाव रखते हैं किसी भी चीज के, तो कितना संघर्ष करना पड़ता है उसके बाद, है ना, आपकी शक्ति कम हो गई, उसके बाद लड़ाई हुई और उसके बाद दोबारा लड़ाई करने के लिए पूरा अमृत प्राप्त करने के लिए कितनी योजना करी, कितना संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद जाके ये अमृत प्राप्त हुआ। और देवताओं को भगवान ने शक्ति दी रजोगुण की शक्ति, सॉरी असुरों को रजोगुण की शक्ति दी ताकि ये एंडेवर करें, प्रयास करें और से चनिंग निकले। अगर किसी का रजोगुण बढ़ाना पड़ता है तो उसको वो शक्ति वो उस प्रकार के आकर्षण देने पड़ते हैं, है ना। और हम बाद में देखते हैं, हालांकि देवता सब मिलकर प्रयास कर रहे थे लेकिन सबका उद्देश्य था कि मुझे अमृत चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। वहां से दूसरी तरफ से देवता भी प्रयास कर रहे हैं और असुर भी प्रयास कर रहे हैं। असुरों का क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पर देवताओं का है कॉमन इंटरेस्ट कि हम जो अमृत मिलेगा सब बांट के खाएंगे। यहां पे जब अमृत बाद में प्राप्त ही हुआ तो कोई भी असुर उसको ले नहीं पाया, हालांकि उनको प्राप्त भी हो गया था, तो आपस में झगड़ रहते कौन पिएगा इसको। सो जब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखते हैं एक कॉमन इंटरेस्ट की जगह भगवान को प्रसन्न करना, तो क्या होता है उस फ्रेंडशिप में कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, दैट इज नॉट रियल फ्रेंडशिप। रियल फ्रेंडशिप मीन्स जब हम एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ, एक कॉमन लक्ष्य के साथ प्रयास करते हैं। इससे एक शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। और यहाँ पे वसुकी के बारे में भी बताया गया कि उनको तमोगुण की शक्ति दी, तो इसमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसकी टीका में बताते हैं कि वसुकी, और भगवान इसको गीता में बताते हैं, सर्पा नाम अस्मि वसुकी, कि जितने भी सर्प हैं उसमें मैं वसुकी हूँ, मतलब वो एबिलिटी मेरी उसमें दिखाई देती है, मेरी शक्ति विभूति उसमें दिखाई देती है। तो वसुकी इस तमोगुण में थे और बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ने वाले थे, बिल्कुल मरने वाले हैं, जब वो मर जाएंगे तो कैसे फिर समुद्र मंथन होगा। तो भगवान ने उनको भी शक्ति दी तमोगुण की, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं इसके अंदर कि भगवान ने इससे उनको तमोगुण की शक्ति दी ताकि जब वो इल्यूजन तमोगुण के भ्रम में होंगे तो उनको दर्द नहीं होगा, है ना। हम देखते भी हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा तमोगुण में उसको हिलाओ मारो पीटो कुछ नहीं होता। एक बार ऐसी मैम ये प्रसंग मूल्य किश्को से डिस्कस कर रहा था, पूछने कहा था कि एक चीज डिस्कस कर रहे थे मुझे, तो बता रहे थे कि मान लीजिए अगर कभी किसी को ऐसे उदाहरण दिया उन्हें गटर या कुछ ऐसे कुछ ड्रेन साफ करवानी होती है, तो व्यक्ति को व्यक्ति जब करने आता है उसको साफ तो बहुत पी के आता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति वहां पे खड़े होकर उसको ठीक नहीं कर सकता, तो उसको बहुत चढ़ा के आनी पड़ती है ताकि उसको कुछ प्रभाव ना पड़े। यानी जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसको उसके ऊपर चीजों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या स्मेल आ रही है, क्या हो रहा है। तो एक बार ऐसे एक ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे थे, उससे पूछा कि हम तो यहाँ से लेके कटरा तक बिल्कुल नॉन स्टॉप चला सकते हैं। मैंने कहा कि कैसे भाई, तो उन्होंने कहा कि बस हमें एक चीज़ चाहिए, या तो दो चीज़ें, या तो चाय चाहिए या तो स्प्राइट, स्प्राइट पीने को मिल जाए। तो उससे क्या होता है, ऐसा स्टिमुलेटिंग फैक्टर इफेक्ट मिलता है, ऐसा एक्टिव हो जाता है व्यक्ति तो पूरा कार्य करने लग जाता है। तो शास्त्र में इसे बताया गया कि कुछ आहार, और कहते हैं कभी हम अन्न नहीं लेते जब ड्राइविंग करनी होती है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि अन्न से तमोगुण उत्पन्न होता है और रजोगुण उत्पन्न होता है, तो इसलिए अन्न नहीं लेते। जैसे कुछ शुद्ध आहार होते हैं सत्वगुण, दूध जैसे सत्वगुण में बताया जाता है, अन्न थोड़ा रजोगुण आपके अंदर थोड़ी एनर्जी उत्पन्न करता है, और तमोगुण जैसे कि एक कोल्ड ड्रिंक्स आजकल की कोल्ड ड्रिंक्स स्प्राइट कोला पेप्सी फेंटा, इसको तमोगुण में माने जाते हैं क्योंकि ये हमारी अंदर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे एक तरह के इंटॉक्सिकेंट आपके अंदर उत्तेजना प्राप्त उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए वसुकी को तमोगुण की शक्ति दी ताकि जितना भी इसको खींचेंगे इसको दर्द ना हो, तो उसके बाद वसुकी को कोई दर्द नहीं हुआ। एक साइड देवतागण थे और एक साइड असुरगण, जब असुरगण थे उनका वसुकी के मुख को वो खींच रहे थे और देवता उनके पूंछ को खींच रहे थे। तो जब मुख को खींचे थे असुरगण तो सारा शरीर उनका काला हो गया, बलि महाराज यहाँ तक कि जब उनकी सारे शरीर की कांति हो गई क्योंकि अपने मुंह से वो विष उत्पन्न कर रहे थे, तो पूरे शरीर काले हो गए और वहां से देवताओं के भी काले हो रहे थे। ऐसा नहीं सिर्फ असुरों के प्रति ज्यादा इफेक्ट था, कुछ इफेक्ट देवताओं के प्रति भी आ रहा था। तो इसके आगे के तात्पर्य में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि आगे एक ही तात्पर्य छोटा सा और ये भी छोटा सा तात्पर्य, इसके बाद कई श्लोकों के बाद ये आगे तात्पर्य की श्रृंखला आती है। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि भगवान हालांकि इसकी शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं लेकिन इसका क्रेडिट खुद नहीं ले रहे, है ना। आगे जाके ये जहाँ से विश्व उत्पन्न होगा, और उस समय भगवान वहां पे उत्पन्न भी थे, प्रकट भी थे, तो सभी देवतागण जब विश्व प्रकट हुआ तो देवतागण भगवान के साथ शिवजी से प्रार्थना करने गए कि आप इस विश्व को ग्रहण करिए। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं उस समय भगवान भी वहां पर प्रकट थे, उस विश्व को खुद भी खत्म कर सकते थे भगवान, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं शिव जी को कि आप इसे खुद ग्रहण कीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि क्योंकि भगवान ये क्रेडिट अपने भक्तों को देना चाहते हैं, है ना। तो इस अमृत का क्रेडिट चाहे कुछ भी एंडिवर्स का क्रेडिट भक्तों को देना, लेकिन पीछे सारी योजना भगवान की चल रही है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को हर चीज का क्रेडिट देना चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों का गुणगान मुझसे भी ज्यादा हो, सो कृष्णा वॉन्ट्स दैट हिज डिवोटी शुड बी ग्लोरिफाइड मोर देन मी। जब चैतन्य महाप्रभु एक लीला में आता है कि एक राघव पंडित भक्त थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत गुणगान करते हैं सभी भक्तों के बीच में। ये कहते हैं कि ये जो भक्त हैं ये अगर मेरी सेवा के लिए इनको नारियल भी लेके आना होता है तो बहुत दूर जाते हैं, 20 मूल नारियल आसपास बहुत मिलते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट नारियल नारियल पानी जो होता है मेरे को ऑफर करने के लिए ये बहुत दूर जाते हैं 20 मील, और उसके बाद 20 मील वापस आते हैं, कहाँ कहाँ से खोज के नारियल लेके आते हैं और मुझे पिलाते हैं। उसके बाद इस प्रकार भोग लगाते हैं ताकि एक मिट्टी का कण भी अंदर ना आए, इतनी सफाई के साथ रखते हैं सारे भोग को। सो वी सी द लीला इन द पास्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में भी, कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को गुणगान करते हैं, और भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों को गुणगान मेरे से ज्यादा हो। तो यहाँ पे सारा क्रेडिट दे रहे हैं देवताओं को, सारा क्रेडिट दे रहे हैं भगवान शिव को कि जिन्होंने हलाहल, और इसी से भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन होता है कि भगवान नीलकंठ कहलाते हैं भगवान शिव भी इस प्रकार। हालांकि इस विश्व को भगवान खुद भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये भक्तों को गुणगान करने के लिए, अपने भक्तों को क्रेडिट देने के लिए। तो इसमें से हम और यहाँ पे हम देखते हैं इस लीला में कि भगवान अपने भक्तों की किस प्रकार रक्षा कर रहे हैं, है ना। पूरे शुरू से लेके एंड तक अगर आप इस लीलाओं को देखें, यहाँ तक कि जब अमृत भी प्राप्त हो जाएगा तभी भी लड़ाई होगी, अमृत प्राप्त होने के बाद भी लड़ाई होगी, देवता असुरों के पास अमृत चला गया। अब शुरू से इसकी देखें तो भगवान ने किस प्रकार योजना बनाई थी, एक भक्तों को अपने जो इंद्र को अहंकार हुआ था उस अहंकार को खत्म किया, पहले सब कुछ उनसे छिनवा दिया, आप देवतागण वीक पड़ गए, अब उनके अंदर रिपेंटेंस आया कि पश्चाताप आया कि हमें अब भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो ये रिपेंटेंस है ये एक प्योर सोल के अंदर आता है, आई मीन गुड सोल, इट्स अ साइन ऑफ गुड सोल, जिसके अंदर कुछ अच्छे गुण विकसित हुए हैं उसी के अंदर ये पश्चाताप की भावना आती है। कभी मान लीजिए ऐसा हो सकता है कुछ हमसे ऐसे जाने जाने में कुछ गलत कार्य हो गए, लेकिन ये बाद में रियलाइज करना कि हाँ मेरे से ये गलत हुआ है, ये एक अच्छा लक्षण है एक भक्तों के अंदर कि हमें रियलाइज भी हो रहा है कम से कम, और ये बहुत अच्छा लक्षण है कि बहुत तुरंत रियलाइज हो जाए, कुछ बाद में हो सकता है ये अलग अलग डिग्री से वेरी कर सकता है, ये रिपेंटेंस रियलाइज होना बहुत जरूरी है। इसको बताते हैं कंसाइंस, जब तक व्यक्ति की कंसाइंस रहती है विवेक शक्ति या उसका जमीर, तब तक भक्त भक्ति में प्रगतिशील रहता है। जब तक एक कंसाइंस खत्म हो जाती है, जब ये विवेक शक्ति की मैं किसी साथ बुरा करूं और मुझे फील भी ना हो, तो ये जब कंसाइंस खत्म हो जाती है अब भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये कंसाइंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, जो एक सत्वगुण का लक्षण है ये भी। और प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं भारतम के चौथे स्कंध में कि एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी डन इन द मॉर्निंग पार्ट हैज ग्रेटर इम्पैक्ट देन डन एनी अदर पार्ट ऑफ द डे, कि कोई भी अगर कार्य व्यक्ति सुबह के समय करता है, कोई भी आध्यात्मिक कार्य, चाहे वो अपना जप करे, चाहे श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, चाहे वही कार्य वो किसी उसी कार्य को कि दिन के किसी और समय में करे। सो इसमें एक चीज समझने वाली है, जब सत्वगुण व्यक्ति विकसित करना होता है तो व्यक्ति को सत्वगुण के कार्य करने पड़ते हैं। हम अगर प्रभुपाद जी की फाइनल पास में एक वीडियो भी देखते हैं जिसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं जीवन के अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग प्रभुपाद जी की, इसके अंदर प्रभुपाद जी बस शरीर कुछ दिनों के बाद छोड़ ही देंगे, और दो दिन पहले की ये वीडियो की रिकॉर्डिंग है प्रभुपाद जी, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर किसी को ये प्रयास करना चाहिए कि वो रोज सत्वगुण के कार्य करे, और जैसे कि मंगल आरती करना, भगवान के लिए भगवान के नाम का जप करना, इससे क्या होगा व्यक्ति की अंदर की ग्रीड खत्म होगी, लस्ट एंड ग्रीड। तो ये काम और लोभ, ये दो जो एक बच्चे के शत्रु हैं ये खत्म होंगे, क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक व्यक्ति सेल्फलेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भगवान बिल्कुल एक सेल्फलेस एक्शन कर रहे हैं, है ना, सारा क्रेडिट अपने भक्तों को दे रहे हैं। तो भगवान के भक्तों को भी वैसे सेल्फलेस होना चाहिए। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त अपने अपने प्रयासों का श्रेय किसी और को देता है, किसी और को देता है वास्तव में जनरली, कि दूसरों को ये क्रेडिट देता है कि हाँ वास्तव में इन भक्तों के कारण मैं ये प्रयास कर पाया, ये सारा क्रेडिट इन भक्तों को ही जाना चाहिए, इन भक्तों से मैंने सीख के कुछ बोला, ये क्रेडिट इन भक्तों को ही जाना चाहिए, इन भक्तों से सीख के मैंने कुछ स्किल्स सीखे उसके कारण मैं कुछ सेवा में लग पाया, तो ये क्रेडिट उन भक्तों को ही जाना चाहिए। सो जब हम भक्तों के संग में होते हैं बहुत सारी चीज़ें उनके संग में रह के सीखते हैं, इसलिए हर भक्त हमारे जीवन में कुछ ना कुछ योगदान रहता है। तो यानी ये क्रेडिट सब भक्तों को ही जाता है। और जब हम इस भाव को देखते हैं कि व्यक्ति हर क्रेडिट को भक्तों को ही अर्पित करता है, जैसे आप कह सकते हैं कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन व्यक्ति कहते हैं ये तो कुछ नहीं है, भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है, उसी के कारण हो पाया, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस भावना को विकसित करना चाहिए कि किस प्रकार हर चीज़ को भक्तों के संग में संग और भक्तों की कृपा मान कर ही उसको भक्तों को ही अर्पित करें। तो यहाँ पर भगवान अलग अलग अरेंजमेंट कर रहे हैं और अवसरों को जिताने के लिए, जैसे बंदर पर्वत गिरा तो उसको संभाला, ऊपर से संभाला, उसके बाद धन्वंतरी अवतार के साथ अमृत के साथ प्रकट होंगे, और मोहनी मूर्ति के अवतार के बाद वो अमृत असुरों से लेके देवताओं को देंगे। तो हम देखते हैं कि हालांकि देवतागण वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे पीछे जो योजना हो रही है किसकी हो रही है, भगवान की। और देवतागण इसको देख पा रहे हैं कि भगवान ऊपर भी बैठे हैं, हमारे साथ रस्सी भी खींच रहे हैं, नीचे गुरु अवतार के साथ भी हैं। तो जो भक्त होता है वो भगवान की इस अरेंजमेंट को देख पाता है। एक बार एक भक्त से पूछा कि हैव यू सीन गॉड, कि आपने भगवान को कभी देखा है? उन्होंने कहा भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के हाथों को देखा है मैंने अपने जीवन में कार्य करते हुए। तो कभी कभी भगवान को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान हमारे जीवन में क्या क्या हमारे लिए योजना बना रहे हैं, क्या क्या हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है ना, बजाय कि ये कि मैं भगवान को देख लूँ। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के कार्यों को, भगवान के जो हमारे जीवन में योजनाएं हैं उसको हम देख सकें। जीवन में बहुत समस्या है, जैसे इसमें भी बहुत समस्या आई देवताओं को, लेकिन कभी उन्होंने भगवान की शरण नहीं छोड़ी। जब देखा भगवान के आदेश के कारण वो पर्वत को उठा के गए, और कुछ लोग कुचल भी गए, कुछ के हाथ पैर टूट गए, लेकिन भगवान की शरण नहीं छोड़ी। और ये सारी मुश्किलें हमारे लिए बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, भगवान के लिए तो प्ले थिंग था। भगवान ठीक है पर्वत गिर गया, चलो उठा लो, अच्छा उसको डाल दीजिए, अच्छा अब ये डूब रहा है, चलो ठीक है नीचे सपोर्ट दे देते हैं। मतलब हमारे लिए देखें कितनी बड़ी बड़ी पर्वत डूब रहा सागर के अंदर, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं है, प्ले थिंग्स। तो जैसे बताया जाता है द गॉड इज ओमनीशियंट एंड गॉड इज ओमनीपोटेंट, ये समझने वाली बात है। अगर भगवान सर्व सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सर्वशक्तिशाली भी हैं, है ना, भगवान सर्वशक्तिशाली, सब कुछ करने में समर्थ हैं और सब कुछ जानते हैं, और फिर भी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा लगे कुछ करते नहीं दिख रहे, हालांकि भगवान सब कुछ जानते भी हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी भक्त को कभी ऐसा फील हो कि कुछ ऐसा भगवान का दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा कि भगवान क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि भगवान की कुछ योजना है, कि भगवान सब कुछ जानते भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। और भगवान की अल्टीमेट योजना हर भक्त के लिए यह है कि हर भक्त इस जीवन में और जितना जल्दी हो सके मेरे भगवत धाम वापस लौट जाए, और उसकी उस भक्त की तीव्रता, जो खासकर भक्ति में लगे हैं उनकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, अलग अलग कभी सो कॉल्ड डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं ताकि उस भक्त के वो देवीगण निकल सके। यहाँ भी भगवान असुरों को देवीगुण सतुगुण दे रहे हैं, सतुगुण देवीगुण बताया जाता है, क्योंकि अलग अलग आकर्षण से बचने के लिए इस सतुगुण की शक्ति है, क्योंकि देवतागण यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान उनके गुणों को बढ़ा रहे हैं, और जो भगवान की सेवा में नहीं लगे भगवान उनके रजोगुण बढ़ रहे हैं, है ना, जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अमृत पाना चाहते हैं उनका रजोगुण बढ़ रहा है। तो जो भगवान की सेवा में लगे हैं इससे एक यहाँ पे लक्षण प्राप्त होता है, ये एक शिक्षा यहाँ पे मिलती है, तो भगवान उनके देवी गुणों को बढ़ाते हैं, कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कई गुणों की आवश्यकता होती है ना, और ये गुण भगवान ही देते हैं। जब देखते हैं भगवान की ये मेरी सेवा का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे देवताओं को देख सकते हैं कि देवताओं ने बिना शंका के भगवान के निर्देश को माना और सेवा में लग गए, जैसे जैसे भगवान ने कहा कई कठिनाई आई, कई परेशानी आई, लेकिन भगवान की शरण छोड़ी और अंत में उनको अमृत ही मिला। तो इसलिए जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनको भगवान एक विशेष सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, और साथ साथ अलग अलग समस्याओं के साथ होते हुए भी उनके गुणों को बुलाते हैं। यहाँ पे देवताओं को बहुत कष्ट मिला, समुद्र खींचने में बिल्कुल थक गए। यहाँ पे लिखा है वसु के तो बिल्कुल शरीर छोड़ने वाले थे, है ना। तो उन कष्टों के साथ भगवान ने उनको प्रोटेक्शन भी दी और साथ के साथ उनके गुणों को भी बढ़ाया, है ना, ताकि किसी चीज से आप आकर्षित मत जाइए, ना गुस्सा कीजिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ मिलेगा, है ना। और तो भगवान यहाँ पर अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। इसको समझने वाली बात है कि अलग अलग योजना बना के ये सिखा, ये अपने अरेंजमेंट से ये सिखा रहे हैं कि हर किसी की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पीछे भगवान का ही हाथ होता है। हो सकता है कोई भक्त अच्छी भक्ति करके प्रयास करे, लेकिन उसमें अच्छी प्रेरणा भगवान ही देते हैं पीछे से, वो भक्तों के संग के कारण प्राप्त होती है। तो एक भक्त को देखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको बताते रहे। एक भक्त को देखिए, यहाँ पे एक कोट भी लिखा है यहाँ पे हमारे नोटिस बोर्ड पे, तो बहुत अच्छा लगा। इफ बाय चांस यू कैन फॉरगेट, यू मे फॉरगेट कृष्णा, हो सकता है कि आप शायद कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन कृष्णा कैन नॉट फॉरगेट यू, लेकिन भगवान आपको नहीं भूलते। हो सकता है कृष्ण मति रस्तु, ये भक्तों का आशीर्वाद भी ऐसे होता है। चैतन्य महाप्रभु किसी से मिलते थे तो ये आशीर्वाद देते कि आपकी मति कृष्ण में लगे, मे यू नेवर फॉरगेट कृष्णा, आपका मन कृष्ण में लगा जाए। तो कभी कभी हो सकता है कि हम परिस्थिति को देख के भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान हमें देख रहे होते हैं उस परिस्थिति में भी, ये मेरी शरण लेता है नहीं लेता, और नहीं भी लेता तो भी मदद कर रहे होते हैं, जाने हम जाने या ना जाने, क्योंकि हम जाने या ना जाने लेकिन भगवान हमें हमेशा ही जानते हैं। कृष्णा नेवर फॉरगेट्स अस। और भगवान की ये योजना होती है हमारे लिए कि किस प्रकार ये व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मेरे धाम को वापस लौटे, इसकी भक्ति को तीव्र करने के लिए क्या क्या जरूरतों करने, क्या क्या इनके साथ इस भक्त को कैसे ट्रेन करना है, कैसे इसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है ताकि ये उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को पार करते 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 मेरे धाम को आ जाए। और भगवान का हर भक्त के प्रति एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कैसे इस भक्त को अपनी भक्ति के प्रति आकर्षित करना है, कैसे इस भक्त का प्रेम जगवाना है। तो हो सकता है ऐसे करते समय भगवान कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स लें, ऐसे कुछ कार्य भक्त से करवाएं ताकि उसके लिए कुछ कठिन हो या उसके लिए कई मुश्किलें पैदा हों, लेकिन इन सबको करने के पीछे भगवान का यही उद्देश्य होता है कि ये भक्त पूर्ण रूप से शरणागत होकर मेरे निर्देशों को प्राप्त करें, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे व्यक्ति संसार की अलग अलग विपदाओं से पार कर सकता है। इसलिए भगवान का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है अपने भक्तों के लिए वो ये है ताकि हर कष्टों को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए ये साक्षात्कार मिले उसे कि मुझे हर स्थिति में भगवान को शरणागत करना है। सो दिस इज द अल्टीमेट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कृष्णा फॉर द कंडीशन सोल। तो और इसमें देख रहे हैं भगवान कितनी एक लीला रचने के लिए, अपने आनंद के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और एक लीला से कितने उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, जो देवताओं के उसके उनके अहंकार को भी तोड़ना है, उनको भी एक अपने पति समर्पित करवाना है, एक ये किया, और अपनी लीलाओं में और अपने आनंद की विधि करना भी। अगर भगवान को प्रभुपाद जी बताते खारिज करवानी है तो भगवान पर्वत से खारिज लेते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति अपना हाथ भी नहीं डाल पाता है ना। और भगवान ने इस लीला में भक्तों की रक्षा के लिए 5 अवतार भी लिए। तो इसमें जब हम भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी इसके सीधी के तात्पर्य में बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान के हाउ वी कैन सी द हैंड्स ऑफ कृष्णा इन आवर सिचुएशंस। तो प्रभुपाद जी इसको चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताते हैं कि जब कोई भक्त सिंसियरली कृष्ण के निर्देशों का पालन करता है तो वो देख पाएगा कि कृष्ण कैसे उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं। ही विल सी द हैंड्स ऑफ कृष्णा इन ऑल द अरेंजमेंट्स। जब वास्तव में कोई भक्त भगवान के निर्देश भक्त या भगवान या भक्तों के निर्देशों को पालन करता है तो वास्तव में वो देख पाएगा सिंसियरली, अगर प्रयास कर रहा है तो देख पाएगा कि कृष्ण किस प्रकार उसकी मदद कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक समय बैठे थे सैन फ्रांसिस्को मंदिर में और कुछ 20 लोग बैठे थे उनके साथ। तो प्रभुपाद जी ऐसे उनके बीच में बात करें कि डोंट वरी, वेरी सून विल कवर द होल वर्ल्ड, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्दी पूरे विश्व को कवर कर लेंगे। अगले दिन उनको किराए के पैसे देने के पैसे भी नहीं है, उसका कुछ जिस फ्रांसिस्को स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद ने एक किराए पर मकान लिया था, पैसे भी नहीं थे। तो ऐसे माता जी बताती हैं कि अगले दिन हमें मकान खाली करना था और हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं थे। अचानक मैं जब सुबह उठ के अपने घर से, क्योंकि घर अलग था, प्रभुपाद जी का घर पीछे था और एक स्टोर फ्रंट आगे था, तो जब मैं निकली सुबह तो आकाश से ऐसे पैसे गिरते हुए नजर आए, $20 $50 ऐसे करके उस दिन का किराया दे दिया। तो जब हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने कृष्ण के निर्देश अपने अपने गुरु महाराज के जब निर्देशों को पालन किया सिंसियरली, विदेश गए अकेले 70 साल की उम्र में, तो किस प्रकार उनके लिए भगवान निर्देश ये अरेंजमेंट कर रहे थे। जब प्रभुपाद जी पहुंचे वहां पर माती माता जी जगन्नाथ जी लेकर आए, उनको लगा कोई गुड्डा है ना, छोटा सा गुड्डा है। तो जैसे जगन्नाथ जी को देखा तो प्रभुपाद जी उनको प्रणाम कर, प्रभुपाद जी उनको प्रणाम किया। और ये जगन्नाथ जी प्रभुपाद जी 5 साल के जब थे तब उनकी रथ यात्रा निकालते थे, तो जिनकी से, और फिर प्रभुपाद ने 5 साल के बाद जब लिखा लीला में पढ़े गए तो उसके बाद हर साल रथ यात्रा निकालना शुरू किया प्रभुपाद ने, अपने बचपन से रथ यात्रा निकालते थे। जब इतना प्रभुपाद के भगवान के प्रति प्रेम था तो भगवान उनको कैसे छोड़ सकते थे। और जब वहां पर आए तो गर्गा मुनि, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर ले गए कि ये मैंने जब भारत में गया था वहां पर तो मुझे चैतन्य महाप्रभु ये चित्र प्राप्त हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपको देता हूँ। उनको पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका आए तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, चैतन्य महाप्रभु, वहां पर रथ यात्रा शुरू हो गई और अलग अलग आगे प्रयास हुए और ये पूरा आंदोलन पूरे वर्ष भर में फैल गया। तो जब एक सिंसियर भक्त भगवान की सेवा करता है तो उन भगवान के हाथों को अपने जीवन में देख पाता है। तो इसलिए जब चाहे संपद हो चाहे विपद हो, एक भक्त चाहे मुश्किल परिस्थिति हो या सब कुछ ठीक चल रहा हो, दोनों परिस्थिति में भगवान की शरण लेता है। तो आज हम एक भक्तिनाथ ठाकुर का ये सॉन्ग करना चाह रहे थे, मानस से देहा गया जो कुछ मोर, तो मैं चाहूंगा अगर आप ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हमारे बीच में किशोर किशोर ये भजन गाना चाह रहे थे।
Oh, ये चंद दी तो गृह जाने जन्मा
Oh,
జగద్గురు శ్రీ ప్రభుపాదకి.